بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن سیشن نمبر 22. آج انشاءاللہ ایک تو کافی لیٹ ہو گیا یہ سیشن مجھے, کیونکہ لا تحزن کے سیشنز جو ہیں وہ کتاب کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی کافی ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اور ایک دو دن سے چند ایسی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے افیکٹو ریسرچ نہیں ہو رہی تھی. لیکن ٹاپک ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ثنا نے ایک بہت خوبصورت کوٹیشن بھیجی تھی ہٹ اینڈ فٹ مومنات میں, جیسے وہ بھیجتی رہتی ہیں, اور وہی کوٹ میں نے اس سے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اور آئی فیلٹ کہ یہ لا تحزن میں ڈسکس ہونا چاہیے. تو یہ کتاب جو ہے لا تحزن, اس کے پیج نمبر 429 پہ ایک بڑا زبردست چیپٹر ہے جس میں انہوں نے استاد جو ہیں القرنی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی موت کس وقت آ جائے گی, اس کو اس کا کیا فائنل جو اس کا دن ہے دنیا میں. اکثر لوگوں کو اسے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے. تو جو اتنی انپریڈکٹیبل زندگی ہے, اس کو ہم کیسے پلان کر کے گزار سکتے ہیں, اور ہم کیسے پہلے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا. اور پھر انہوں نے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی سڑک پر انتظار کر رہا تھا, وہ اس کو سواری چاہیے تھی, اور اس کے سامنے ایک ٹرک آ کے رکا, ایک پک اپ, اور جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے اندر تو جگہ نہیں ہے, لیکن جو پیچھے کھلی جگہ ہے جو اس کی وہ ڈگی ہے, تم اس میں بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں تمہاری منزل پہ پہنچا دوں گا. اب یہ آدمی جا کے اس ڈیک میں بیٹھ گیا, اور اس ڈیک میں ایک خالی تابوت پڑا ہوا تھا. وہ آدمی شاید وہ تابوت کہیں لے جا رہا تھا, تو یہ آدمی پیچھے بیٹھ تو گیا, لیکن تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی, تو اس نے ایک آئیڈیا سوچا کہ وہ اس تابوت کے اندر لیٹ گیا, اور اس نے وہ اس کی لڈ اپنے اوپر بند کر لی کہ چلو اس طرح میں بارش سے بھی بچ جاؤں گا اور اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد آگے جا کے, اور یہ آدمی جو تھا یہ اس تابوت میں سو گیا, تو تھوڑی دیر آگے جا کے جو ہے تو اس ڈرائیور نے کسی اور کو لفٹ دی, وہ بھی اسی طرح سڑک کے کنارے کھڑا تھا, تو اس کو کہا کہ دیکھو اندر تو گاڑی میں جگہ نہیں ہے, لیکن پیچھے تم بیٹھ جاؤ. تو وہ آدمی پیچھے ڈیک میں چڑھا اور بیٹھ گیا. اب یہ جو تابوت کے اندر سو رہا تھا, اسے نہیں پتہ چلا کہ ڈیک میں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے, اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جاگا, تو اس نے تھوڑا سا وہ لڈ ہٹا کے دیکھا کہ کیا چل رہا ہے, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں. تو جب اس نے وہ لڈ ہٹائی اور اپنا سر باہر نکالا, تو جو دوسرا مسافر تھا اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو ڈر کے مارے اس کو دل کا دورہ پڑ گیا, اور وہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے وہیں پہ وہ فوت ہو گیا. اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم کو چھوڑ گئی. تو استاد القرنی یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ابھی آپ ٹھیک ٹھاک چنگے بھلے گاڑی میں بیٹھے ہیں, اور آپ ایک سفر کر رہے ہیں, اور ایک دم سے آپ کو ایک دہشت ناک نظارہ ایسا نظر آئے جو بالکل اگلے آدمی کو بھی کچھ نہ پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور اب وہ دیکھ کے جو ہے تو آپ کے دل کی حرکت بند ہو جائے اور زندگی ختم ہو جائے. تو موت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک لحاظ سے بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے, اور ایک لحاظ سے بہت موٹیویشنل بھی ہے. ڈی موٹیویٹنگ تو وہ ایسے ہے کہ ہم جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس زندگی کا اور اس کا کیا فائدہ, اور جب بھی ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ایک دم سے جی جناب پلگ آف ہو جائے گا, سوئچ آف ہو جائے گی ہماری زندگی. لیکن یہ موٹیویٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں واقعی کچھ نہیں پتہ کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے, اور یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اگلی دنیا میں. اس کے بعد جو ہماری ایک ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے, اس کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے اور اس کے لیے کمائی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو قرآن میں متاع کہا ہے, یعنی ایک فائدہ, کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا ہوا ہے کہ اگر تم کچھ کما سکو اپنی آخرت کے لیے تو تم کما لو, اور اپنی آخرت جو ہے, اپنی عاقبت جو ہے وہ تم سنوار لو. تو یہ موت جو ہے اس کو آپ ایک لائٹ میں دیکھیں تو وہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے, اور ایک اور لائٹ میں اگر دیکھیں تو وہ بہت موٹیویشنل ہے, حالانکہ چیز ایک ہی ہے, موت ہے. तो ये वाक्या मैंने आपको इसलिए सुनाया कि हमारी ज़िंदगी में जो हमें मसले मसाइल पेश आते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सी डीमोटिवेटिंग बातें नज़र आती हैं, कुछ फैमिली के मसले होते हैं, कुछ हमारी नौकरी में, कुछ जॉब प्लेस में मसले होते हैं, हमारे रोज़मर्रा कामों में रुकावटें पेश आती हैं, कभी हमें कोई लॉस फेस करना पड़ता है, हमारी रिलेशनशिप्स में मसले मसाइल होते हैं, लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फैमिली डिस्टर्ब्ड हो जाती है उनकी, लोग बीमार हो जाते हैं, माली मसले मसाइल सामने आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये बहुत डीमोटिवेटिंग है। जब इंसान ये सोचता है उफ़ अल्लाह ज़िंदगी तो, यानी कि वो जैसे शेर में है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, तो बहुत ही एक डीमोटिवेटिंग चीज़ है कि रोज़ जब सुबह इंसान उठे तो उसके जहन में मसले मसाइल भरे हुए हों और वो जो है तो उसके रास्ते में हमेशा रुकावटें उसको नज़र आएँ, कि अगर वो एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना भी चाहता है और उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम है तो भी वो ये कहेगा कि ये रोज़मर्रा के मसले मसाइल जो हैं ये मुझे मेरा मकसद नहीं हासिल करने देते, कभी तो ये एक्चुअली रुकावटें बन जाती हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली या मेरे बच्चे मुझे ये काम नहीं करने देते, फिर ये है कि मैं वक्त की कमी का शिकार हूँ, आखिर 24 घंटों में मैंने कम से कम 6 से 8 घंटे तो सोना है और उसके बाद जो मेरे पास 12-16 घंटे बच जाते हैं तो उसमें मैं आखिर क्या क्या करूँगा और क्या कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी बनाऊँगा। और इसके नतीजे में लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये उनको एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने से रोक देती हैं। ये जो मैंने आपके सामने एक सिनारियो बयान किया ये है, इसको हम लोग प्रॉब्लम फोकस्ड कहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक मसले को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ वो मसला नज़र आता है और उस मसले के ऊपर वो फोकस हो जाते हैं और वो फिर उस मसले में से निकल नहीं सकते, वो उसी के अंदर ही चक्कर खाते रहते हैं, चकफेरियाँ लगाते रहते हैं उसके अंदर और वो ये सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और आखिर फलां के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ और अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता और अगर मेरे साथ ऐसा मसला ना होता तो मैं तो बड़ी एक बामकसद ज़िंदगी गुजारता या गुजारती। तो यानी कि वो सारा वक्त अपनी प्रॉब्लम को कोसते रहते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और उन्हें गुस्सा आता रहता है। और स्ट्रेस तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर जो है, जो हमें कुछ भी हासिल करने से रोकता है और तकरीबन सारी बीमारियों की बुनियाद जो है सेलुलर लेवल से लेके, यानी एक खलिए से लेके हमारा एक पूरा सिस्टम अगर आप ले लें, जैसे हमारा मैदा है या हमारे गुर्दे हैं या हमारी आँखें हैं या दिल है, तो वो सिस्टम ले लें और फिर एक पूरे इंसान को आप ले लें, तो एक खलिए से, एक सेल से लेके पूरे इंसान तक जो चीज़ यूनिफॉर्मली ख़राबी करती है और वो खून की शरियाने तंग करती है और वो कैंसर करती है और वो अल्सर्स बनाती है और वो हर किस्म के मसले मसाइल करती है, वो है स्ट्रेस। तो प्रॉब्लम फोकस लोग जो हैं, जो एक प्रॉब्लम जब उनको दरपेश आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर कुछ नहीं सोचते, वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उस स्ट्रेस के नतीजे में वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो ज़हनी तनाव का और ज़हनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर बीमारी के नतीजे में वो मज़ीद स्ट्रेस हो जाते हैं, यानी वो एक ऐसे साइकिल में दाखिल हो जाते हैं जिसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमें ये बात समझ आ गई कि हम लोग अगर प्रॉब्लम फोकस्ड हैं तो हमारी ज़िंदगी में फिर मज़ीद बेहतरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हम लोग बल्कि एक ख़तरनाक किस्म के साइकिल में एंटर हो जाते हैं जहाँ हम एक स्ट्रेस से अगले स्ट्रेस तक चलते रहते हैं और जब हम सेकेंड स्ट्रेस में पहुँचते हैं तो थर्ड स्ट्रेस हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम फोकस्ड इंसान को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम फोकस्ड लोग जो हैं वो एक लिहाज से मैं ये कहूँगी, मैं वैसे तो मैं फेलियर या नाकाम किसी को नहीं कहती, लेकिन प्रॉब्लम फोकस लोग वो हैं जो बदकिस्मती से एक फेलियर और एक नाकामी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और उनको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब इसका इलाज क्या है? तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एक हल होता है ना, हर मसले का एक हल होता है, ये एक जुमला है जैसे, और हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अब वो सोल्यूशन जो है, कुछ लोग प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं और कुछ लोग फिर सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। वो जब एक प्रॉब्लम को देखते हैं और एक मसले को देखते हैं तो वो उसको देख रहे होते हैं, लेकिन उससे आगे, उस प्रॉब्लम से आगे वो उसके हल को देख रहे होते हैं, उसके हल के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जो बेहतरीन लीडर्स हैं, यानी कि मैं आपको मिसाल, खैर लोकल लीडर्स में से मैं आपको दूं, जैसे इमरान खान, मतलब ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि वो ही इज़ अ मॉडर्न लीडर, मतलब कोई मुझसे इत्तेफाक करे या ना करे, ये मैं नहीं कह रही कि आप उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं या आप उनको सपोर्ट करें, मेरा मतलब ये है कि ही इज़ अ मॉडर्न लीडर, ही इज़ अ लीडर ऑफ़ द यूथ, और बहुत ज़्यादा लोग उनके पीछे हैं, उन्होंने एक इलेक्शन जीता है, 20-22 साल की मेहनत की है, सो कुछ ना कुछ तो टैलेंट उनमें होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं है और वो कुछ बन गए हैं। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं जब शौकत खानम में काम कर रही थी, तो वहाँ पर जितने लोग हैं शौकत खानम में जो लीडिंग पोजिशंस में हैं, जो बड़ी पोस्टों पर हैं, उनके पास जब अक्सर ऐसा होता है ना कि क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है और आपको हर किस्म के मसले मसाइल वहाँ दरपेश आते हैं, सेंसिटिव किस्म के मरीज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट थेरेपीज़ होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टाफ होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मल्टीपल लोग, मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें होती हैं जिसमें अक्सर क्लैश होता है और मसले मसाइल बन सकते हैं। तो जब भी आप किसी बड़े के पास जाएं वहाँ शौकत खानम में अपना कोई मसला बताने, तो वो हमेशा आपको ये कहते हैं कि प्लीज़ डोंट कम टू मी विद अ प्रॉब्लम, कम टू मी विद अ सॉल्यूशन। ये एक यूनिफॉर्म बात है जो वहाँ सब करते हैं, यानी कि आप अपने कोवर्कर की या अपने साथ काम करने वाले की या मे बी मरीज़ की या जो भी, उसका जो भी मसला मुझे बताने आए हैं, अगर आपको उसका हल पता है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मसले मसाइल तो मुझे पहले से पता है। और ये एक ऐसी अप्रोच है जो मैंने वहाँ से सीखी है कि आप मतलब ये कामयाबी की कुंजी है कि इंसान जब प्रॉब्लम फोकस ना हो और वो सॉल्यूशन फोकस्ड हो, वो पहले से वो हल सोच के जाए कि जो मसला मुझे दरपेश आया है उसका हल क्या है। तो ये वो लोग हैं जो, चूँकि आजकल हम लोग जो लातहसन में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, हम लोग विजन्स पढ़ रहे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी के नज़रिए कैसे बनाएं और वो अपनी ज़िंदगी को किन उसूलों के तहत गुजारें, अपनी तरजीहात का वो कैसे तायुन करें। तो जो लोग प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, वो तो मैंने आपको समझा दिए कि उनको हर एक चीज़ में एक प्रॉब्लम नज़र आती है, कभी उनको वक्त की कमी होती है, कभी उनको डिप्रेशन होता है, कभी उन्हें गुस्सा आया हुआ होता है। लेकिन जो लोग विजन फोकस्ड होते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ये ज़िंदगी एक नज़रिए के तहत गुजारनी है, तो जो लोग विजन फोकस्ड होते हैं, वो उस विजन के मुताबिक अपने रोल्स बनाते हैं, जो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं कि आपने अपने रोल्स कैसे डिटरमिन करने हैं, अपनी जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो किरदार आप अदा कर रहे हैं, आप किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की फ्रेंड हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार हैं जो आप ज़िंदगी में अदा कर रही हैं, और इन किरदारों को आपने अपनी विजन के मुताबिक कैसे ढालना है। प्रॉब्लम के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे, पहले आप रोल्स के बारे में सोच रहे हैं, फिर हर रोल में आपके पास सेट गोल्स होंगे कि मैंने इस रोल में ये गोल अचीव करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने इनके साथ ये मदद करनी है, मैंने इनसे ये काम करवाना है, ये आपके गोल्स हैं। तो जो विजन फोकस्ड लोग होते हैं, वो अपनी विजन के मुताबिक अपने वक्त को भी अलॉट करते हैं, अपनी तरजीहात का भी तायुन करते हैं, और जो चार बड़ी तरजीहात मैंने आपको बताई थी, जो कि जो है कि मैंने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, वो लिव के उसूल हैं, फिर मैंने ज़िंदगी को प्यार मोहब्बत से गुजारना है, वो लव के उसूल हैं, फिर उसके बाद मैंने मुसलसल सीखना है और तरक्की करनी है, मेरा आज जो है वो कल से बेहतर होगा, वो लर्न के उसूल हैं, और फाइनली मुझे इस दुनिया में काबिल कदर मीरास छोड़ के जाना है, जो मेरे बाद आने वालों के लिए फ़ायदे का सामान हो और उनको भी उससे फ़ायदा पहुँचे। तो ये फिर लीव अ लेगेसी वाली बात है, या एक काबिल कदर मीरास छोड़ने वाली बात है। ये चार उसूल जब आप अपने सामने रखते हैं तो आपको अगर कोई मसला दरपेश भी आता है तो उस वक्त अगर आप ये सोचें, जैसे मुझे सुबह मेरी कोई अपॉइंटमेंट है और मेरे घर में फैमिली में कोई मसला दरपेश आ गया, मसलन एक बच्चा या बीमार हो गया या उसे चोट लग गई और उसने मुझे वहाँ पे रोक लिया जिसकी वजह से मेरी वो अपॉइंटमेंट मिस हो गई, तो नेचुरली ये एक फ्रस्ट्रेशन की बात तो है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, मुझे गुस्सा आएगा, मैं ये सोचूंगी कि आखिर कोई और नहीं है जो मेरा ये काम कर दे, मेरे साथ कोई भी हेल्प नहीं करता, मैं बस बिल्कुल अकेली ही मुझे ये सारा कुछ करना पड़ता है और सारी जिम्मेदारियां मैंने ही अपने सिर पे उठाई हुई हैं, बाकी सारे घर वाले तो बड़ी स्मूथ जिंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो ये अगर मैं ये सोचती रहूँगी तो मेरा मसले मसाइल जो मेरे हैं वो इसी तरह वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और गुस्से में मैं अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ भी शायद तुर्श रवैया रखूँगी, उस बेचारे को मैं सही तरह सपोर्ट नहीं कर सकूँगी और घर वालों की तरफ से भी मैं बदजन हो जाऊँगी, मेरे दिल में नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी। इसके ऑपोज़िट अगर मैंने अपनी तरजीहात का तय्युन किया हुआ है और इस तरह की सिचुएशन अगर मुझे दरपेश आ जाए तो सबसे पहले तो चूंकि मुझे पता है कि स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है और गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है और ये मेरे जिस्म को और मेरे रिलेशनशिप्स को और मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहले तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी और मैं उस वक्त ये सोचूंगी कि अब तो ये मसला दरपेश आ गया है, इसका बेहतरीन हल क्या होगा। और चूंकि बच्चे के साथ भी मैंने ही रुकना है, वो मेरा बच्चा है, उसको मेरी ज़रूरत है, जाहिर है वो तो अब मेरी टॉप प्रायोरिटी बन गई, वो तो A1 वाली प्रायोरिटी बन गई, यानी मोस्ट अर्जेंट भी बन गई और इम्पॉर्टेंट भी बन गई। तो उस वक्त फिर हल क्या होगा कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है मैं उसको रीस्केड्यूल कर लूँ, मैं फ़ोन करूँ जिनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है उनको सॉरी कहूँ और उनको कहूँ कि जी मुझे एक मसला दरपेश आ गया है, आप प्लीज़ मुझे ये अपॉइंटमेंट दोबारा कब दे सकते हैं, बस वो मुझे बता दें तो मैं हाज़िर हो जाऊँगी। हो सकता है वो मुझे एक दो घंटे बाद की अपॉइंटमेंट दे दें जबकि मैं घर में अपनी सिचुएशन स्मूद आउट कर चुकी हूँ, उसको आराम से सारा कुछ ठीक ठाक करके और मैं जाके अपनी अपॉइंटमेंट भी कराऊँ, दोनों काम मेरे हो जाएँ। हो सकता है वो मुझे कल की अपॉइंटमेंट दे दें, लेकिन ये मसला ऐसा है नहीं कि मैं इसमें अपने रिलेशनशिप्स भी ख़राब करूं, अपने आप को स्ट्रेस भी करूं और अपने आप को गुस्सा भी दिलाऊं और मसले का हल भी ना ढूंढूं। ठीक है जी, अब एक जो स्टीफन कवी ने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी है कि एक दफ़ा वो आ रहे थे, मतलब कि वो सीढ़ियों से उतरे, अपने बेडरूम से नीचे आए और बैठे मेज़ पर और उनको किसी मीटिंग में जाना था, कोई काम था उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इतने में ऊपर से उनकी बच्ची दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि ओहो मुझसे स्कूल की बस भी मिस हो गई, स्कूल की बस मुझसे मिस होने वाली है। वो बच्ची ये बोल रही थी, बड़ी परेशान थी, और जब वो इनके पास से गुजरी है तो कॉफ़ी का मग जो है इनके पास टेबल पे जो पड़ा हुआ था वो इनके ऊपर गिर गया, इनकी जो वाइट शर्ट थी या जो भी सूट इन्होंने अपनी मीटिंग के लिए पहना हुआ था वो उसके ऊपर सारी कॉफ़ी गिर गई। और इन्होंने बच्ची को तो खूब डांटा, पहले तो उसको खूब सुस्त कहा कि तुम्हारी वजह से ये मसले हो गए और ये वो, बच्ची वहाँ पे रोना शुरू हो गई, छोटी बच्ची थी डर गई, वो उसने बसूरना शुरू कर दिया, डांट सुन रही थी वो। उस सारे हंगामे में बच्ची की बस मिस हो गई, बस चली गई उसकी, फिर इन ये जो थे एक तो इनका सूट सारा ख़राब हुआ हुआ था, फिर ये गए हैं, इन्होंने कपड़े बदले हैं, नीचे उतरे हैं, जल्दी जल्दी हबड़ दबड़ में बच्ची को गाड़ी में बिठाया है, उसको उसके स्कूल छोड़ने गए हैं। उसको जब स्कूल छोड़ने गए तो उसने रोते रोते उनको रास्ते में बताया कि मैं तो अपनी किताबें या लंच कोई ज़रूरी चीज़ वो भी घर पे भूल आई हूँ। और जब ये बच्ची को वहाँ ड्रॉप करके लेट अपनी मीटिंग में पहुँचे तो वहाँ इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मीटिंग में इनको जो फाइल लेके जानी थी वो भी ये घर पे भूल गए। तो यानी, और फिर इन्होंने कहा कि अगर यही सारा सिनारियो जो उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा होता, क्योंकि उनको उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हमेशा मिसालों से बात क्लियर करते थे, और चूंकि बहुत बड़ी टीम थी उनकी 7 हैबिट्स वाली तो वो लोग उनकी एक्चुअल वीडियोस बनाते थे और वो उसके ज़रिए समझाते थे। तो उन्होंने ये कहा अगर मुझे ये प्रेजेंटेशन कहीं से मिली, ये पावर पॉइंट पे है प्रेजेंटेशन, अगर मुझे मिली इंशाल्लाह तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जब बच्ची ऊपर से चीखती भी आई है कि मेरी बस मेरी बस, तो उस वक्त आप यानी कि आराम से, और वो कॉफ़ी उसने गिरा दी, शुरू तो यहीं से हुआ था ना, कॉफ़ी गिर गई, मसला ये हुआ था, तो आप आराम से उठते वहाँ से, बच्ची को कहते कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, बच्ची को आप उसकी उसका लंच उसकी किताबें पकड़ाते, बाहर उसको बस में छोड़ के आते, उसको बिल्कुल ना रोने देते ना परेशान होने देते, फिर वापस अंदर आते, अपने कपड़े बदलते, अपनी फाइल उठाते और काम की जगह पे चले जाते। और अगर आप लेट हो रहे थे तो चूंकि आप घर में ही थे तो आप घर से फ़ोन करके कहते कि जी मैं 5 या 10 मिनट या 15 मिनट लेट पहुँचूंगा। तो इसमें किसी का कोई नुकसान ना होता। असल में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जब आपने बच्ची को डांटना शुरू किया है तो आपकी और बच्ची की रिलेशनशिप ख़राब हुई है हमेशा के लिए। वो बच्ची आपसे बदजन हो जाएगी कि मैं अपने बाप के सामने ना ऊंचा बोल सकती हूँ, ना मैं उनके सामने अपने किसी डिस्ट्रेस का इजहार कर सकती हूँ, ना मैं उनको ये शिकायत कर सकती हूँ कि मैं लेट होने वाली हूँ। और वो बच्ची जो है वो हमेशा आपके सामने एक बड़ी दबी हुई और एक बड़ी यानी कि ऑप्रेस्ड किस्म की ज़िंदगी गुजारेगी। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से ये बात समझाई थी और उन्होंने ये कहा था कि एक सिचुएशन दरपेश जब आती है तो असल में वो सिचुएशन आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन जो आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं असल में नुकसान आप अपना उस वक्त करते हैं। तो एक सिचुएशन जब आपको दरपेश आती है और आप जब उसको रिस्पॉन्स देते हैं, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है, एक छोटा सा फासला होता है जो कि आपके कंट्रोल में होता है। और वो जो टाइम है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्या रिएक्शन दूंगा या मैं क्या रिएक्शन दूंगी, वो टाइम सबसे कीमती होता है, क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो ये डिटरमिन करता है कि अब आगे से आपका काम स्मूथ आउट होगा, आपको एक हल मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा, या आपका काम जो है वो उसी मसले में आप फंस जाएंगे और मज़ीद फ्रस्ट्रेट होंगे और मज़ीद स्ट्रेस आउट होंगे और ना आपका मसला हल होगा और ना ही आपकी टेंशन में कोई कमी होगी। तो ये विजन फोकस्ड वर्सेस प्रॉब्लम फोकस्ड लोग जो हैं, या सॉल्यूशन फोकस्ड वर्सेस जो प्रॉब्लम फोकस्ड लोग हैं, ये उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये रिकॉर्ड करवा रही हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब तक आप हल पे नहीं सोचेंगे, जब तक आप सॉल्यूशंस पे नहीं सोचेंगे, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ना कोई अच्छी बात सामने आ सकती है, ना कोई बुराई ख़त्म हो सकती है, बस ज़िंदगी जामिद हो जाएगी, वो एक जगह पे रुक जाएगी। अगर किसी कोई प्रॉब्लम दरपेश आ गई है तो वो उसी प्रॉब्लम में फंस के बैठा रहेगा और फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। ठीक है जी, तो आज का लेसन मेरा इतना ही था, और इसके बाद आप मुझे ज़रूर अपने सवाल जवाब भेजें और क्लियर करें ये बात कि आपने प्रॉब्लम फोकस से सॉल्यूशन फोकस्ड कैसे होना है। तो कल मिलने के वादे के साथ इंशाल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।